अब मैं अध्याय 3, जिसका शीर्षक है व्यक्ति, समाज एवं अंतःक्रिया, इसका रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से व्यक्ति एवं समाज का संबंध, सामाजिक समझौता या संविदा का सिद्धांत, समाज का अव्ययी सिद्धांत, व्यक्तिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया, इन सब विषयों की चर्चा करेंगे। व्यक्ति, समाज एवं अंतःक्रिया, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इंट्रैक्शन। इस तथ्य को हम तमाम जानते हैं कि व्यक्तियों के अभाव में समाज का निर्माण संभव नहीं है। जिस प्रकार व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार समाज से व्यक्तियों का भी निर्माण होता है। शिशु के रूप में व्यक्ति सबसे पहले किसी परिवार में ही जन्म लेता है और वह परिवार समाज की एक इकाई है। व्यक्ति के जीवन में परिवार एक ऐसा स्थल है जहां वह समाज की जानकारी प्राप्त करता है और फिर पूरे समाज में उसकी हिस्सेदारी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है। परिवार में व्यक्ति समाज से जुड़ता है और समाज व्यक्ति से जुड़ता है, और यह काम समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संभव हो पाता है। संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे, समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हम इस बात को अक्सर दोहराते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों के बीच संबंध इतने गहरे हैं कि व्यक्ति अकेले रहते हुए भी अकेला दिखाई नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक से अधिक पहलू होते हैं, तभी तो जेज फैक्टर ने व्यक्ति के बारे में कहा है कि ही इज अ सिंगल बट कंपोजिट एंड कॉम्प्लेक्स बींग। व्यक्तियों का अध्ययन सिर्फ समाजशास्त्र में ही नहीं होता, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों एवं जीव विज्ञानों में भी होता है। कोई व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पहलू, कोई राजनीतिक पहलू, कोई सांस्कृतिक पहलू तो कोई जैविक पहलू का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री व्यक्तियों का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। जब हम यह कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो उससे यह बोध नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कितना सुसंस्कृत, गुणवान या आकर्षक व्यक्तित्व का है, बल्कि इससे हमारा तात्पर्य हमेशा यह होता है कि कोई व्यक्ति कितना समूह में रहने की क्षमता रखता है, उसमें एक दूसरे के प्रति कितना सहयोग करने की भावना है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह मात्र एक जैविक प्राणी की तरह होता है, लेकिन समाज उसे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक प्राणी बनाने की कोशिश करता है। पर यहाँ हम व्यक्ति की जैविक क्षमता को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मनुष्यों में कुछ विशिष्ट प्रकार की जैविक क्षमता होती है जिसके कारण वह सामाजिक प्राणी बनता है, लेकिन उस जैविक क्षमता को सामाजिक रूप देने का काम समाज ही करता है। मात्र जैविक क्षमता से व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में प्रकृति व परिपोषण, नेचर एंड नर्चर दोनों की भूमिका होती है। व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार का संबंध है, व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, व्यक्ति किस रूप में समाज पर निर्भर करता है तथा व्यक्ति क्यों सामाजिक प्राणी है, आदि विषयों को लेकर दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र में काफ़ी चिंतन किया जाता है। और सच तो यह है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति के पूर्व इस विषय पर विद्वानों ने भी काफ़ी विचार विमर्श किया है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को लेकर बहुत प्रकार के विचार आए हैं, जिसे यहाँ संक्षेप में स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्ति एवं समाज का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार आते रहे हैं। अब तक जितने भी विचार आए हैं उसे मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एवं समाज का अव्ययी सिद्धांत। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। वर्तमान समय में व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए इन दोनों सिद्धांतों को अपर्याप्त, भ्रामक एवं काल्पनिक माना जाता है। इन दोनों प्रकार के सिद्धांतों में दार्शनिक विचार ज़्यादा तथा समाजशास्त्रीय विचार कम दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच किस प्रकार का संबंध है, इस पर जितना अच्छा प्रकाश समाजीकरण संबंधी विचार से पड़ता है, उतना इन दो सिद्धांतों से नहीं। लेकिन समाजीकरण की चर्चा करने के पहले इन दो सिद्धांतों की चर्चा पहले की जाएगी, इसलिए कि समाजीकरण संबंधी विचारों की तुलना में यह दोनों सिद्धांत काफ़ी पुराना है। इसमें तो कुछ विचार समाजशास्त्र की उत्पत्ति से भी ज़्यादा पहले से प्रचलित हैं। समाजीकरण की चर्चा विस्तार से इस पुस्तक में एक अलग अध्याय में की गई है। ए, पहला, सामाजिक समझौता या संविदा का सिद्धांत, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्तियों के द्वारा समाज जैसे संगठन का निर्माण जानबूझकर किया गया है। चूंकि इसका निर्माता स्वयं मनुष्य है, अतः समाज निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य मानव हितों की रक्षा है। दूसरे शब्दों में, इस दृष्टिकोण के समर्थक समाज की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। साथ ही इस दृष्टिकोण के समर्थक यह भी मानते हैं कि व्यक्ति चूंकि समाज का निर्माता है, अतः सामाजिक निर्णय एवं व्यक्तिगत निर्णय के बीच भेद हो सकता है एवं सामाजिक निर्णय के विरुद्ध व्यक्तियों के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक तथा रूसो आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। जॉन लॉक के शब्दों में, व्यक्ति जन्म से स्वभाव से स्वतंत्र, स्वच्छंद और समान है। उसकी इच्छा के बिना कोई राजनीतिक सत्ता उसे दबा नहीं सकती है। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर सहयोग कर समुदाय या समाज बनाने का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। इस विचार के प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। मुक्त प्राकृतिक वातावरण, पहला, सामाजिक संबंधों के सिद्धांत की एक प्रधान स्थापना यह है कि प्रकृति ने मानव के लिए स्वच्छंद वातावरण का निर्माण किया है। प्रत्येक व्यक्ति इस वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वच्छंद है। उस पर किसी प्रकार का बाहरी अंकुश नहीं है। प्रकृति जिस तरह स्वच्छंद और मुक्त है, व्यक्ति भी उसी तरह स्वच्छंद और मुक्त है। अतः उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अनुसार तथा अपनी शक्ति के अनुसार उपयोग करना है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्राणी है। दूसरा, व्यक्तियों के बीच जन्मगत समानता, मेन आर बॉर्न इक्वल। जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं है, समान भी है। मानव जीवन की आरंभिक स्थिति में तमाम व्यक्ति की हैसियत समान थी। उनमें उम्र, रंग या लिंग के प्राकृतिक भेद थे, पर कोई सामाजिक भेद नहीं थे। दूसरे शब्दों में, उनके बीच वर्ण, वर्ग, जाति, धन, प्रतिष्ठा, इन पर आधारित सामाजिक विभाजन नहीं था। आरंभिक स्थिति में व्यक्ति आर्थिक समाज और सांस्कृतिक समाज दोनों दृष्टियों से समान था। तीसरा, व्यक्तियों के बीच आपसी संघर्ष, वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन।
हॉब्स की यह धारणा थी कि आरंभिक स्थिति में व्यक्तियों के बीच कठिन संघर्ष हुआ करता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी अधिक से अधिक शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करता था, ताकि वह प्रकृति के साधनों पर अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त कर सके। इस कारण व्यक्ति व्यक्ति के बीच निरंतर संघर्ष, विग्रह एवं युद्ध चलता रहता था। इसका कोई अंत नहीं था। मानव जन्म से स्वच्छंद, स्वतंत्र और समान था। इस कारण व्यक्ति व्यक्ति के बीच युद्ध और भी भयानक रूप से चलता होगा। हॉब्स ने इसलिए यह बुनियादी प्रश्न उठाया, उनके बीच व्यवस्था कैसे स्थापित हुई और आज तक यह कैसे कायम रही। उनके अनुसार यह संविदा के माध्यम से संभवतः हुआ होगा। चौथा, व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध, व्यक्तियों के बीच आपसी समझौता। मनुष्यों ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में निरंतर बर्बर संघर्ष और अराजकता की स्थिति में शायद यह अनुभव किया कि इस ढंग से उनके किसी भी आवश्यकता की समुचित पूर्ति संभव नहीं थी। व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर ही कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकता था। इससे तो संघर्ष अस्थायी बना रहेगा। अतः इस अराजक एवं बर्बर युद्ध की स्थिति से मुक्त होने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता करने की जरूरत महसूस की। उन लोगों ने यह तय किया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित नियम बन जाएं। कौन कितनी चीज प्राप्त करेगा और किस आधार पर, परिवार का निर्माण कैसे होगा, परिवार की मर्यादा क्या होगी, मूल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित इन प्रश्नों पर पारस्परिक समझौता हुआ और इस प्रकार सामाजिक नियमों तथा संस्थाओं का विकास हुआ, परिवार का उदय हुआ तथा क्रमशः अन्य समितियों का। व्यक्तिगत संबंध सामाजिक नियमों के आधार पर स्थापित होने लगे। इन संबंधों, संस्थाओं और समितियों के योग से समाज बना। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार समाज का उदय इसी प्रक्रिया से हुआ। पांचवा, समाज एक कृत्रिम संगठन के रूप में। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार समाज एक कृत्रिम संगठन के रूप में व्यक्ति के ऊपर आरोपित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्रमशः ह्रास होता गया और समाज का अंकुश व्यक्ति पर बढ़ता गया। छठा, व्यक्ति सर्वोपरि, समाज कौन। सामाजिक समझौता के सिद्धांतकारों ने अंत में यह विचार प्रस्तुत किया कि चूंकि व्यक्तियों द्वारा समाज का निर्माण हुआ, अतः व्यक्ति की स्थिति सदा समाज में अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा अपने समूह के अंदर व्यवस्था एवं शांति और सहयोग और सद्भाव बनाए रखने के लिए समाज का विकास किया है। अतएव व्यक्ति के लिए समाज साधन है, साध्य नहीं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति को सर्वसर्वा मान लिया, जबकि यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति की जो मानवीय क्षमताएं हैं उनका विकास समाज के द्वारा ही संभव है, जैसे भाषा या धर्म का विकास। इस प्रसंग में एक प्रसिद्ध उदाहरण का जिक्र करते हुए यह कहना उचित होगा। कमला नगर एक का एक बच्ची की भिड़िया से भगा था। इसे फिर से सुनिए, माफ करिएगा। कमला नामक एक बच्ची को एक भिड़िया ले भागा था। भेड़ियों के बीच वह पली। जब वह पाई गई तब उनमें मानव के कुछ भी गुण नहीं थे। वह बोल नहीं सकती थी, खड़ा होकर ठीक से चल भी नहीं सकती थी। बाद में समाज के बीच रहते रहते उसने भी तमाम गुण सीख लिए। इससे प्रमाणित होता है कि समाज के बिना व्यक्ति सामाजिक बन नहीं सकता। यह प्रमाणित करना कठिन है कि व्यक्तियों ने ही आपसी समझौता के माध्यम से समाज का निर्माण किया है। यह विचार भी प्रमाणित नहीं हो सकता है कि आदिमकालीन स्थिति में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी तथा उनके बीच समानता थी। आदिम समाजों के अध्ययन ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मानव के आरंभिक स्थिति में आदर्श स्वतंत्रता और समानता का रहना अनिवार्य नहीं था। यह एक कल्पना मात्र है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों ने शायद यह पता नहीं था कि व्यक्ति आज किस तरह सोचता है, अनुभव करता है, इच्छाएं व्यक्त करता है, इसके लिए वह समाज पर निर्भर है। दूसरा यानी बी, समाज का अवयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। अवयवी सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है वह सामाजिक सिद्धांत के सिद्धांतों के ठीक विपरीत है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्रधान है, वह समाज का निर्माता है तथा वह समाज पर हावी रहता है। किंतु अवयवी सिद्धांत के अनुसार समाज प्रधान है, व्यक्ति उस पर निर्भर करता है, अतः समाज को व्यक्ति पर हावी रहना है। समाजशास्त्र के कुछ प्रारंभिक विद्वानों ने इसे स्पष्ट करने के लिए समाज की तुलना शारीरिक अवयव से की। उन्होंने यह विवेचना किया कि जिस प्रकार शरीर और उसके विभिन्न अंग मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार समाज की संरचना भी अवयवी है। समाज में उसी तरह की व्यवस्था है जिस तरह शरीर में अलग अलग अंग हैं। यह पूरा शरीर अवयवों की एक समन्वित इकाई है। समाज की व्यवस्था भी इसी ढंग की है। व्यक्ति उसके अंग मात्र हैं जो मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। समाज के अवयवी सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने दी। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि जिस प्रकार शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह समाज के अंग भी अलग अलग कार्य करते हैं, अर्थात विभिन्न व्यक्ति अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। हृदय, यकृत, गुर्दा एवं जिगर, ये सब अन्य अंगों की तुलना में शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। महत्वपूर्ण इस अर्थ में हैं कि इन लोगों के क्षय होने पर शरीर का भी क्षय हो जाता है। जबकि हाथ या पैर कट भी जाएं, तब भी शरीर जिंदा ही रहता है। इस तरह समाज में कुछ व्यक्ति मिलकर समाज के अंग के रूप में जिंदा रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शरीर के विभिन्न अंग। स्पेंसर ने कहा है कि अन्य जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है, कालक्रम में वह प्रौढ़ होता है और उसका अंत भी होता है। उदाहरण स्वरूप पुराने समाज का अंत और उसके बाद नए आधुनिक समाज का जन्म हुआ और अब विकास भी हो रहा है। इसी प्रसंग में स्पेंसर ने यह भी कहा है कि शरीर के निर्माण में कोशिकाओं और ग्रंथियों का महत्व है। कालक्रम में कोशिकाओं और ग्रंथियों का क्षय होता है, उनकी जगह नई कोशिकाओं और ग्रंथियां निर्मित होती हैं। समाज की कोशिका है व्यक्ति, समाज के अंग एवं व्यवस्था हैं समितियां एवं संस्थाएं। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके साथ साथ नई कोशिकाएं यानी नए व्यक्तियों का जन्म होता है। मकीवर एवं पेज ने इस विचारधारा के अतिवादी रूप का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि समाज की विशिष्ट संरचनाएं यानी अंगों को शरीर के विभिन्न अंगों के समकक्ष माना गया है, अर्थात समाज के भी दिमाग, हृदय, फेफड़े की कल्पना की गई है। इस प्रकार संक्षेप में अवयवी सिद्धांत का कहना है कि पहला, व्यक्ति समाज का एक अंग मात्र है। दूसरा, समाज के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तथा तीसरा, अतः समाजों के नियम, मूल्यों एवं आदर्शों के अनुकूल ही व्यक्ति को चलना है। इस तर्क का निचोड़ यह है कि समाज सर्वोपरि है। सामाजिक समझौतों की तरह यह अवयवी सिद्धांत भी गलत साबित हो चुका है। इस सिद्धांत के अंतर्गत काफी त्रुटियां हैं जिन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला, शरीर के अंग का महत्व तभी तक रहता है जब तक वह जीवित शरीर का अंग बना रहता है, किंतु समाज के तमाम अंगों पहला, शरीर के अंग का महत्व तभी तक रहता है जब तक वह जीवित शरीर का अंग बना रहता है, किंतु समाज के तमाम अंगों के बारे में यह बात लागू नहीं है। कुछ समितियां और संस्थाएं समाज से स्वतंत्र होकर भी कायम रह सकती हैं। दूसरा, प्राणियों के शरीर वरणशील हैं पर समाज नहीं। प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक समाज तक पहुंचने की सामाजिक यात्रा नवनिर्माण नहीं है,
यह तो समाज का क्रमशः विकास है, इस विकास का अंत नहीं होता है। आदिम समाज, समानतावादी समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज, आधुनिक समाज, आधुनिकोत्तर समाज आदि समाज के विकास की विभिन्न संभावनाएं हैं। विकास का यह क्रम चलता रहता है। व्यक्तियों का जन्म मरण होता है, समितियों और संस्थाओं का भी उदय और अंत होता है, किंतु इससे समाज की निरंतरता कभी खत्म नहीं होती है। एक व्यक्ति की जगह दूसरे आते हैं, ये समितियां संस्थाएं गठित होती हैं। अतः अनुभव एवं तर्क की दृष्टि से समाज की तुलना अवयवी शरीर से करना गलत है। तीसरा, अवयवी शरीर जब स्वस्थ है तो उसमें शारीरिक प्रक्रियाओं का एक संतुलन बना रहता है। इसके विपरीत बीमारी की स्थिति में शरीर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। समाज की व्यवस्था में संतुलन असंतुलन, सहयोग संघर्ष, शांति और युद्ध, स्वास्थ्य और व्याधिक दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं। इस अर्थ में समाज सदैव एक संतुलित अवस्था में नहीं रहता है, तथापि यह एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में बना है। चौथा, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल ये इंसान थे, किंतु इन महान व्यक्तित्वों ने अपने अपने युग के समाज की रूपरेखाएं ही बदल दी। उसके विचार, आदर्श, नियम बदल दिए गए, इस तरह समाज को ही बदल दिया। अतः यह कहना कि व्यक्ति सदैव समाज का अनुगमन करता है आंशिक रूप से ही सही है, क्योंकि ये सब व्यक्तित्व इन्होंने समाज का अनुगमन करने के बजाय समाज को अपने अनुसार अनुगमन कराया। पांचवा, तर्क एवं वैज्ञानिकता की दृष्टि से समाज की अवयवी शरीर से तुलना करना इसलिए भी गलत है क्योंकि अवयवी शरीर एक प्रत्यक्ष वस्तु है, हम इसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, किंतु उस अर्थ में समाज एक अप्रत्यक्ष एवं एक निराकार अवधारणा है, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इसमें जी जरूर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि हम समाज में ही जी सकते हैं, समाज में ही रहकर भाषा एवं संस्कृति सीखते हैं। समाज ही हमें जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिणत करता है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि हम जिसे समाज कहते हैं वह व्यक्ति की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा ही बनता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यक्ति और समाज दोनों मकीवर एवं पेच के शब्दों में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोण व्यक्ति एवं समाज के अंतर संबंधों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं। इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण किसी एक पक्ष, व्यक्ति या समाज के महत्व को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करता है। वास्तविक स्थिति यह है कि इन दोनों के बीच अन्योन्याश्रिता का संबंध है। यह सही है कि मानव जाति की उत्पत्ति के समय से ही समाज किसी न किसी रूप में है, क्योंकि सामूहिक जीवन की शुरुआत मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताओं से हुई है, जैसे यौन इच्छा की पूर्ति, संतानों का लालन पालन की इच्छा इत्यादि। इसी प्रकार की इच्छाओं ने परिवार जैसे समूह को जन्म दिया। आगे चलकर मनुष्य की अन्य आवश्यकताएं जैसे आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक आदि ने सामाजिक जीवन की अनिवार्यता को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। साथ ही इसका दूसरा पक्ष यह है कि व्यक्तियों के अभाव में समाज एवं उसकी संस्कृति की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। अर्थात समाज का अस्तित्व व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, परंतु एक बार समाज एवं उसकी संस्कृति के निर्माण हो जाने के बाद ये मानव व्यवहार का नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का स्तर बहुत कुछ समाज की राजनीतिक संरचना पर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप गणतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति की स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। दूसरी ओर अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में सदस्यों की स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता आवश्यक रूप से कम होती है, परंतु समाज चाहे जैसा भी हो व्यक्ति अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व कभी भी पूर्ण रूप से नहीं खोता है। अधिनायकवादी व्यवस्था में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, अर्थात वैसी कठोर शासन व्यवस्था में भी समाज सब कुछ नहीं होता है और न ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विलयन समाज में कभी संभव होता है। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि समाज जिस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है उसी प्रकार समाज का स्वरूप विकास और उसमें होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रायः किसी व्यक्ति विशेष के विचारों खोजों व आविष्कार आदि से प्रभावित होते हैं। बुद्ध, नानक, कार्ल मार्क्स, न्यूटन, गैलीलियो, जेम्स वाट, गांधी आदि वे अपने नए नवीन विचारों एवं आविष्कारों से मानवीय समाज को काफ़ी प्रभावित किया। व्यक्तिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने व्यवहार एवं अंतःक्रिया को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है, जबकि व्यवहार शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। व्यवहार के अंतर्गत वे समस्त चीज़ें चली आती हैं जो व्यक्ति करता, कहता, सोचता या महसूस करता है, चाहे वह उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण हो या न हो। दूसरी ओर अंतःक्रिया एक से अधिक व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण मानवीय व्यवहार से है। दूसरे शब्दों में तमाम प्रकार की अंतःक्रियाएं व्यवहार कही जा सकती हैं, जबकि तमाम व्यवहार को अंतःक्रिया की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। व्यवहार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विसामान्य व्यवहार, डेविएंट बिहेवियर, असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर, असामाजिक व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर, सामूहिक व्यवहार, कलेक्टिव बिहेवियर, जनसमूह व्यवहार, मास बिहेवियर, परंपरागत व्यवहार, कन्वेंशनल बिहेवियर, विवेकी एवं अविवेकी व्यवहार, रेशनल एंड इरेशनल बिहेवियर, सहज व स्वाभाविक व्यवहार, इननेट बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, प्रकट व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियर, अप्रकट व्यवहार, कोवर्ट बिहेवियर इत्यादि। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि समाज का निर्माण इस प्रक्रिया पर आधारित है। सामाजिक अंतःक्रिया मानवीय व्यवहारों का ही परिणाम है, परंतु तमाम प्रकार के मानवीय व्यवहार या क्रिया सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया को जन्म नहीं देते हैं। मनुष्य के अनेक व्यवहार एवं क्रिया सहज प्रवृत्तियों से निर्धारित होती है। इस प्रकार की क्रिया या व्यवहार को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। किसी मानवीय क्रिया या व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, कर्ता यानी एक्टर, कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया को अर्थ प्रदान करना, तथा दूसरा, कर्ता की क्रिया का उन व्यक्तियों के लिए भी अर्थपूर्ण होना जिसके प्रति वह क्रिया निर्देशित करता है। उदाहरण स्वरूप, आँख का झपकाना कोई सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह सहज या सहजात क्रिया इंस्टिंक्टिव एक्शन है, परंतु किसी को आँख मारना एक सामाजिक क्रिया है। यह कर्ता के लिए तो अर्थपूर्ण है ही, उस व्यक्ति के लिए भी अर्थपूर्ण है जिसको कर्ता ने आँख मारा है। जब दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रिया का आदान प्रदान होता है तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब कोई व्यक्ति किसी को देखकर आँख मारता है तो दूसरा उसे देखकर मुस्कुराता है तो इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित होता है तो उसे ही सामाजिक संबंध कहते हैं। अंतःक्रिया
यानी इंट्रैक्शन के चार महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। पहला उत्तेजक स्टिमुलस, दूसरा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्सेस, तीसरा सामाजिक संपर्क यानी सोशल कॉन्टैक्ट, चौथा संचार यानी कम्युनिकेशन। उपर्युक्त उदाहरण से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आंख मारना दूसरे व्यक्ति के लिए उत्तेजना हुआ, जबकि दूसरे व्यक्ति का प्रथम व्यक्ति के द्वारा आंख मारने का अर्थ समझकर मुस्कुराना प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सामाजिक संपर्क का होना भी नितांत आवश्यक है। संपर्क के अभाव में अंतःक्रिया संभव नहीं है। संपर्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। छात्र के द्वारा शिक्षक का अभिवादन करना एवं शिक्षक के द्वारा मुस्कुराकर उसे स्वीकार करने की स्थिति में दोनों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष संपर्क से संबंधित पक्ष एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं। पत्र, दूरभाष या अन्य दूरसंचार के साधनों के माध्यम से दो पक्षों के बीच संपर्क स्थापित संपर्क अप्रत्यक्ष संपर्क कहलाता है। जिलिन एवं जिलिन ने दो प्रकार के संपर्कों की चर्चा की है, सकारात्मक तथा नकारात्मक। सकारात्मक संपर्क सहयोगी अंतःक्रिया को जन्म देता है, जैसे समझौता, आत्मसात्करण, सहयोग आदि। नकारात्मक संपर्क असहयोगी अंतःक्रिया को जन्म देता है, जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि। संचार अंतःक्रिया का चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है। संचार का अर्थ प्रतीकों या भावों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान है। भाषा, जो कि अर्थपूर्ण प्रतीकों का एक अच्छा उदाहरण है, संचार का प्रमुख माध्यम है। संचार तभी हो सकता है जब वह अर्थपूर्ण है, एवं यह तभी संभव है जब अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक हों तथा एक दूसरे द्वारा कही जाने वाली बातों या संकेतों को समझ रहे हों। सामाजिक अंतःक्रिया तीन स्तरों पर संभव है, जैसे पहला दो व्यक्तियों के बीच, दूसरा व्यक्ति एवं समूह के बीच तथा तीसरा दो या दो से अधिक समूहों के बीच। पति पत्नी के बीच या पिता पुत्र के बीच की अंतःक्रिया प्रथम प्रकार की अंतःक्रिया हुई। व्यक्ति एवं परिवार के बीच का संबंध तथा वर्ग एवं शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच के संबंध दूसरी प्रकार की अंतःक्रिया हुई। दो खेल के टीम या दो राजनीतिक दलों के बीच जो संबंध पाया जाता है वह तीसरे प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है।